विरेचन, कैथारसिस। यूनानी कैथारसिस का हिंदी रूपांतर विरेचन है। अंग्रेजी में कैथारसिस में के और सी दोनों का प्रयोग होता है। विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का पारिभाषिक शब्द है और कैथारसिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र का है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीन दोष विकार होते हैं। जब तक ये अनुपातिक स्थिति में रहते हैं तब तक शरीर स्वस्थ रहता है और इनमें किसी के उपचय अपचय अर्थात वृद्धि ह्रास से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। रोग के उपशम का उपाय है वो उपचित अपचित दोषों को पुनः साम्यावस्था में अर्थात आनुपातिक स्थिति में ला देना। शरीर में उपचित या संचित दोष को निकालने के लिए कभी-कभी औषध से ही पर्याप्त नहीं होता, कुछ शारीरिक क्रियाएं भी आवश्यक होती हैं। ये क्रियाएं अनेक प्रकार के हैं, अतः इनकी पारिभाषिक संज्ञाएं भी अलग-अलग हैं। उदाहरण, एक क्रिया वमन कहलाती है। आमाशय में संचित मल के निष्कासन के लिए वमन कराया जाता है। पक्वाशय में संचित मल को विरेचन दस्त की सहायता से निकाला जाता है। इसी प्रकार मूत्राशय की स्वच्छता के लिए वस्त्रकर्म का उपयोग किया जाता है। तो विरेचन मल निष्कासन के द्वारा शरीर शोधन तथा त्रिविध दोषों में साम्यावस्था के निष्पादन की अत्यंत प्रक्रिया या विधि है। इसकी सहायता से अतिरिक्त व्याधिकारक मल बाहर निकल जाता है और मल के निकल जाने से शरीर में फिर से संतुलन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप व्याधि मिट जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ का अर्थ है अपने में रहने वाला। अपने में रहना बाधित होता है। शरीर में विजातीय द्रव्य के आ जाने या बढ़ जाने से उसके निकल जाने पर शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है, अर्थात अपनी प्राकृतिक स्थिति में पहुंच जाता है। स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शारीरिक मल का निष्कासन शोधन जरूरी है, उसी प्रकार मानसिक मल का निष्कासन शोधन जरूरी भी। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, उसी क्रूरता आदि मानसिक मल भी मनुष्य को अस्वस्थ बनाया करते हैं, इसलिए इनकी भी मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। इसकी भी विधियां शास्त्रों में विहित हैं। आयुर्वेद में विरेचन शब्द का पारिभाषिक प्रयोग शारीरिक मल के शोधन के लिए ही रूढ़ है, किंतु अर्थ विस्तार के द्वारा उसका प्रयोग भाव शोधन के लिए भी है। विशेषतः अरस्तु द्वारा प्रयुक्त कथार्सिस के संदर्भ में अनुकरण के समान कथार्सिस में भी अर्थ को लेकर पश्चिम में बड़ा विवाद रहा है। इसकी धार्मिक, नैतिक, मानसिक सभी प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं। उस पूरे प्रपंच की चर्चा यहाँ न तो आवश्यक है और न शक्य। अरस्तु की दुखांतकीय परिभाषा के स्पष्टीकरण के लिए जितना विवक्षित है हम उतने ही तक इसे सीमित रखेंगे। कथार्सिस शब्द अरस्तु के काव्य शास्त्र में केवल एक बार आया है और वहां भी अरस्तु ने स्वयं इसकी कोई व्याख्या नहीं की है, या की तो आज वह उपलब्ध नहीं है। जो अपने राजनीति शास्त्र 5/8 में उन्होंने यह अवश्य कहा है कि इस शब्द की विस्तृत व्याख्या मैं काव्य शास्त्र में करूंगा। लेखक का अभिमत अज्ञात तो होने से अटकलों का द्वार उन्मुक्त रहा है और उस जिसके मन में जो आया है उसे उसने अरस्तु का मंतव्य कहकर प्रस्तुत कर दिया है। बूचर का तो यहाँ तक कहना विगत 100 वर्षों में दुखांतिकीय परिभाषा का प्राय प्रत्येक शब्द गलत व्याख्या का शिकार हुआ है। अरस्तु ने कथार्सिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के प्रभाव के प्रसंग में किया है। परिभाषा का अपेक्षित अंश दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करे। ट्रेजडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर प्यूरिगेशन ऑफ दीज इमोशंस। कथार्सिस शब्द अरस्तु द्वारा उद्भावित नहीं है, यह प्राचीन शब्द है जिसका अनेक प्रसंगों में प्रयोग हुआ है। प्लेटो ने भी इसका प्रयोग किया है, किंतु जैसी अरस्तु की पद्धति है वे प्राचीन शब्दों में नवीन अर्थवत्ता भरकर नवीन संदर्भों में उनका प्रयोग किया है। सदियों तक कहा जाता रहा है कि भावों के विरोचन, शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द पासिंग पैशंस के द्वारा दुखांतक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करता है। वह प्रभाव क्या है और उसके लिए दुखांतक किन भावों का उपयोग करता है, इस संबंध में अनेक मत मतांतर हैं। पियरे कोर्नेई, समय 1606 से 1484, इसंजा रासीन 1639 से 99, गोटा होल्ड एम फ्राइम लेसिंग, समय 1729 से 1881 जैसे प्रख्यात फ्रांसीसी या जर्मन नाटककारों ने लेसिंग को मार्कले ने निर्विवाद यूरोप का प्रथम आलोचक कहा है। कथार्सिस के भले ही भिन्न भिन्न समाधान किए, किंतु इसमें भी एक मत है कि नाटक का प्रयोजन नैतिक ही होता है। डॉक्टर कांति चंद्र पांडे ने अपने कंपरेटिव इथेटिक्स खंड 2 में कथार्सिस के धार्मिक प्रयोग के कई उदाहरण दिए हैं, जैसे किसी मृतक के घर जो बाहर के लोग आते थे वे मृतक के स्पर्श से अपने को अपवित्र मानकर द्वार पर रखे जल पात्र से, जिसका जल दूसरे घर से लाया गया होता था, अपने को पवित्र करने के बाद वापस जाते थे। भारत में भी शव का दाह संस्कार होने के बाद अर्थी के साथ जाने वाले स्नान करते हैं। परिवार के लोगों का आशौच श्राद्ध के दिन तक चलता है। एक अन्य प्रकार के धार्मिक कथार्सिस का उल्लेख अरस्तु ने अपने राजनीतिक शास्त्र 5:8 में किया है। कभी कोई किसी देवता द्वारा आविष्ट पोसेस्ड हो जाता है। भारत के गांव में भी खासकर दशहरे के अवसर पर देवता को खिलाते खिलाते कोई आविष्ट पोसेस्ड हो जाता है और उस स्थिति में वह जो करता है वह सह्य और क्षम्य माना जाता है। उस समय गाजे बाजे खूब जोर से बजते हैं और जो उसके आवेश को बढ़ा देते हैं, और फिर उन्हीं से वे आवेश धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं। यूनान में कुछ लोगों पर धार्मिक हर्षोन्माद चढ़ता था, जिसे उग्र संगीत के द्वारा शांत किया जाता था। इस प्रसंग में संगीत के विरेचक प्रभाव कैथारेटिक इफेक्ट की बात अरस्तु ने कही है। संगीत के तीन प्रभावों का वे उल्लेख करते हैं। एक प्रकार का संगीत वह है जो नैतिक प्रभाव या शैक्षिक मूल्य उत्पन्न करता है। दूसरे प्रकार के संगीत का उपयोग आनंद के लिए होता है। तीसरे प्रकार का संगीत अत्यंत उग्र और अशांत होता है और धार्मिक आवेश को शांत करने के काम में आता है। इस तीसरे प्रकार के संगीत को अरस्तु ने विरेचक कहा है। यह एक प्रकार की शारीरिक उत्तेजना है जो धार्मिक उन्माद से निस्सरण का मार्ग खोलती है। इसके फलस्वरूप आविष्ट व्यक्ति प्राकृतिक विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे उनकी विरेचनात्मक चिकित्सा हुई है, इसका भावात्मक परिणाम है निर्दोष आनंद। राजनीति शास्त्र में भी करुणा और भय के विरेचन की बात आई है। संगीत के विरेचनात्मक प्रभाव की चर्चा भी उठी है, किंतु दोनों में किसी का सविस्तार निरूपण नहीं हुआ है। काव्य शास्त्र में सविस्तार निरूपण का आश्वासन देकर भी अरस्तु ने विरेचन पर बिना कुछ लिखे प्रकरण का उपसंहार कर दिया। ध्यान में रखना कि काव्य शास्त्र में विरेचन की चर्चा न तो नैतिक अर्थ में हुई है न धार्मिक अर्थ में। वहाँ का संदर्भ मानसिक या भावात्मक है, साथ ही कलात्मक भी। इसलिए कलात्मक भावात्मक विरेचन का ही आधार ढूंढना संगत होगा। जैसा हमने देखा है, अरस्तु के कला संबंधी अनेक मंतव्य प्लेटो द्वारा उठाई गई आपत्तियों के समाधान के रूप में है। विरेचन सिद्धांत को भी प्लेटो की एक ऐसी स्थिति आपत्ति की पृष्ठभूमि में देखना विषय की स्पष्टता में सहायक होगा। प्लेटो ने नाटक दुखांतक के प्रभाव की अवांछनीयता जिन कारणों से प्रतिपादित की थी उनकी समीक्षा हो चुकी है। उनका कहना था कि दुखांतक भावों का पोषण और सिंचन कर मनुष्य के पौरुष को क्षीण करता है और उसे निर्बल बनाता है। उच्चतर तत्वों के बदले निम्नतर तत्वों को उभार कर आत्मा में अराजकता उत्पन्न करता है और तर्क का स्थान भावना को देता है। अरस्तु ने गुरु की इस आपत्ति के निराकरण का भी उपक्रम किया है। प्लेटो ने जिसे दोष सिद्ध किया था, अरस्तु ने उसे ही गुण के रूप में प्रस्तुत किया। प्लेटो ने कहा कि भाव का अतिरेक न आत्मा के लिए हितकर, न बुद्धि के लिए और न मन के लिए। अरस्तु ने कहा कि वस्तुतः भावों का दमन हितकर नहीं, हानिकारक है। उन्हें दमित करने के बदले संतुलित रखना वांछनीय और आवश्यक है। इसमें फ्रायड के मनोविश्लेषण का पूर्वाभास देखा जा सकता है। दुखांतक भावों का उद्रेक करता है, यह ठीक है, पर वह उद्रेक स्थायी नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा उच्चावच भावों में सामंजस्य और संतुलन आता है। भावों की उद्दीप्त साध्य नहीं, बल्कि भावों के उपशम का ही साधन है। दुखांतक करुणा और क्षय के भावों को कृत्रिम रूप में उद्रिक्त कर मन में संचित करुणा तथा भय के भावों को निकाल देता है, जिससे मन एक प्रकार की आनंदप्रद विश्रांति का अनुभव करने लगता है। यह स्थिति आत्मा, बुद्धि और मन तीनों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे भावात्मक रुग्णता दूर हो जाती है। यह व्याख्या होम्योपैथी के अनुकूल है, जिसका सिद्धांत है समः समम समयति, सम सम का समन करता है। करुणा और भय के भाव उद्रिक्त होकर मन में विद्यमान करुणा और भय का शमन कर देते हैं, जिससे मन पूर्वापेक्षा स्वस्थ हो जाता है, साथ ही आनंद भी प्राप्त करता है। होम्योपैथी का सिद्धांत समः समम समयति चिकित्सा विज्ञान की एकमात्र पद्धति नहीं है। भारतीय आयुर्वेद अथवा यूनानी चिकित्सा विज्ञान बहुत कुछ विषमः समम समयति पर आधारित है। उदाहरण, गर्मी का उपचार ठंडी चीजों से करते हैं और ठंड को गर्मी से दबाते हैं। प्लेटो ने लाज में इस विषमोपचार का संकेत किया है। शिशुओं के पालन लालन के लिए के नियमों का निर्देश करते हुए वे कहते हैं कि उन्हें निरंतर इतना गतिशील रखना चाहिए कि उन्हें लगे कि समुद्र की लहरों पर अविराम उछल रहे हैं। उग्र संगीत के द्वारा धार्मिक आवेश के उपशम को का दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि बच्चे मौन से नहीं, संगीत से सोते हैं। शांत रखने से नहीं, उछलने से उन्हें जल्दी नींद आती है। भारतीय शिक्षण संस्थाओं की स्थिति देखने पर प्लेटो की बात सही लगती है। छात्रों को कुछ करने को नहीं है, उनके दिमाग में और देह निष्क्रिय हैं, इसलिए तोड़फोड़, प्रदर्शन आदि में सक्रिय होकर वे अपने गतिशील बनाए रखने का प्रयास करते हैं। यदि देह और दिमाग को व्यस्त रखने के साधन उपलब्ध हो जाए, तो उपद्रव के लिए समय नहीं बचेगा। तो प्लेटो के अनुसार बाह्य उत्तेजना की सहायता से आंतरिक उत्तेजना और अशांति का निराकरण होता है। नाटक के अभिनय में प्रस्तुत करुणा और भय के स्थल पर मन में प्रस्तुत करुणा और भय को जगा देते हैं और इससे क्रम उनका वेग कम हो जाता है। जो बात प्लेटो ने केवल संगीत और शिशुपालन के प्रसंग में कही थी, उसे अरस्तु ने अपनी साधारणीकरण की नैसर्गिक क्षमता से व्यापक आयाम प्रदान कर काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना दिया। चूंकि वे चिकित्सक के पुत्र थे, इसलिए चिकित्सा के सैद्धांतिक व्यावहारिक पक्षों को बचपन से ही देखते सुनते आए होंगे और विरेचन से परिचित भी रहे होंगे। फलतः चिकित्सा शास्त्र की इस पद्धति का काव्य शास्त्र में विनियोग उनके लिए सर्वथा स्वाभाविक था। प्रशंसा की इसमें है उनकी इसमें है कि चिकित्सा शास्त्र के एक शब्द को उन्होंने सौंदर्य शास्त्र के अर्थ गर्भ स्थायी उपकरण में परिणत कर दिया। बूचर ने विरेचन की व्याख्या करते हुए कहा कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव दूषित और कष्टप्रद तत्वों से युक्त रहते हैं। दुखांत की उत्तेजना में दूषित अंश के निकल जाने से वे कष्टप्रद के बदले आनंदप्रद बन जाते हैं। जैसे जैसे कार्य व्यापार आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पहले उत्तेजित और बाद में उपशमित निम्नतर भाव उच्चतर परिष्कृत भाव में परिवर्तित होते जाते हैं। करुणा और भय में वर्तमान कष्टकर तत्व निकल जाते हैं, बल्कि यो कहें कि वे भाव स्वयं की ही शोधित विरेचित हो जाते हैं। इस दृष्टि से दुखांतक का कार्य केवल करुणा और भय का निर्गम मार्ग तैयार करना नहीं है, बल्कि उन्हें कलात्मक संतुष्टि का स्पष्ट साधन भी बनाना है। उन्हें कला के माध्यम से के बीच से पार कर शुद्ध और स्वच्छ भी बनाना है। इस शोधन या विरेचन का स्वरूप क्या है, इसका कोई संकेत अरस्तु नहीं करते। उनके लेखन में सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उन्हें विरेचन से कोई कष्टकर तथा अशांतिकर तत्व अभिप्रेत है। भाषण शास्त्र में इन शब्दों की जो परिभाषा उन्होंने दी है, उससे उपयुक्त धारणा की पुष्टि होती है। अरस्तु के अनुसार भय घातक या कष्टकर आसन अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न एक प्रकार की पीड़ा है। इस परिभाषा में तीन बातें ध्यान देने की हैं। एक तो यह कि अनिष्ट ऐसा हो जो घातक प्रतीत हो, दूसरी यह कि वह आसन्न हो, और तीसरी यह कि उसका प्रभाव हम पर भी पड़ने वाला हो। इसी तरह करुणा घातक या कष्टकर अनिष्ट से उत्पन्न एक प्रकार की पीड़ा है, जिसका संबंध ऐसे व्यक्ति से होता है जो वस्तुतः उसका पात्र नहीं होता। उनके ऊपर या अपने किसी आत्मीय के ऊपर उस अनिष्ट के निकट भविष्य में घटित होने की हमें आशंका बनी रहती है, तो करुणा और भय दोनों पीड़ादायक भाव हैं। उनका संबंध ऐसे अनिष्ट से है जो घातक प्रतीत होता है, निकटवर्ती हो और हम पर या हमारे आत्मीय पर घटित होने वाला हो। दोनों में अंतर यह है कि करुणा का पात्र व्यक्ति होता है जिसके संबंध में हम सोचते हैं, और इस पर एक या अनिष्ट नहीं घटित होना चाहिए था। इससे स्पष्ट है कि अरस्तु के अनुसार करुणा और भय परस्पर संबंध भाव हैं। जिस स्थिति में अपने लिए भय होता है, उसी स्थिति में दूसरे के लिए हमें करुणा होती है। अतः जिसमें भय का संचार नहीं होता है, उसमें करुणा भी उत्पन्न नहीं हो सकती। कहने की आवश्यकता नहीं कि भय और करुणा से भय मूल भाव है जिससे करुणा उद्भूत होती है। अंतर यह कि भय स्वयं अपने लिए होता है, करुणा दूसरे के लिए होती है, और उसमें यह आशंका मिली रहती है कि ऐसा हमारे साथ भी घटित न हो। व्यवहारिक जीवन में भय और करुणा के भावों का जो स्वरूप है, वह काव्य जगत में कुछ परिवर्तित हो जाता है। दुखांतक के प्रभाव से करुणा में तो कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका संबंध दूसरे से हुआ करता है, किंतु भय में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वह यथार्थ से काल्पनिक बन जाता है। अतः अपने ऊपर आसन्न अनिष्ट की आशंका उदित नहीं होती। अनिष्ट हमारे सामने खड़ा है, ऐसा बोध हमें नहीं होता, कारण कि हम जानते होते हैं कि भय के कारण का संबंध हमसे नहीं है। फिर भी चूंकि नायक मूलतः हमारे जैसा ही मनुष्य होता है, इसलिए हम उसके प्रति सहानुभूति से सिहर उठते हैं। यदि नायक से हमारा सादृश्य नहीं होता, तो उसके प्रति हमारी सहानुभूति भी नहीं होती। इस सादृश्य पर दुखांतक का प्रभाव निर्भर करता है। नायक सर्वथा निर्दोष या पूर्ण मनुष्य नहीं होता, और न पक्का खल ही होता है। वह साधारण मनुष्य के अपेक्षा अधिक गुणशाली एवं गौरवशाली होते हुए भी त्रुटियों तथा निर्बलताओं का शिकार होता है। वस्तुतः उसे न तो इतना महान होना चाहिए और न इतना निष्कृष्ट कि उसे हम तादात्म्य स्थापित ही न कर सके। तात्पर्य कि उसे हमारे जैसा होते हुए भी हमसे उच्चतर होना चाहिए। गुण में, गरिमा में, स्थिति में, जिससे एक ओर हमें समानता का भी बोध हो और दूसरी ओर कुछ दूरी का भी। इसलिए प्राचीन नाटकों में किसी राजा, राजकुमार या प्रसिद्ध पुरुष को नायक बनाने की परिपाटी थी। दूसरी चीज यह कि उसके भाग्य विपर्य का परिणाम या प्रभाव केवल उसी तक सीमित न रहे बल्कि व्यापक भी पड़े। बुचर नायक से प्रेक्षक के सादृश्य और दूरी भाव की समीचीन व्याख्या करते हुए कहते हैं कि नायक की दूरी जो उसकी महत्ता के कारण होती है, हमें अपने बाह्य जीवन की परिस्थितियों के प्रति किंचित तटस्थ बनाए रखती है। हमें अपनी तात्कालिक वास्तविकता के दबाव का अनुभव नहीं करते, अपने भौतिक अस्तित्व की चिंताओं की कष्टकर्ता से भी हम मुक्त रहते हैं। अतः अंशतः हम दुखांतकीय भावों की कलात्मक परिष्कारक प्रतिक्रियाओं के बीच से होकर गुजरते हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमारे क्षुद्र स्वार्थ की सीमाओं से पृथक होती हैं, अतः साधारणीकरण के योग्य होती है। हम बड़ी यंत्रणा और मानसिक तनाव का अनुभव करते हुए नायक की आसन्न विपत्ति की प्रत्याशा से विह्वल हो उठते हैं, क्योंकि उतनी देर के लिए हमारा अस्तित्व नायक के अस्तित्व में विलीन हो जाता है, अर्थात हम उससे तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। सामने घटित होने वाली घटनाएं हमारे ही साथ घटित होती सी प्रतीत होती हैं। हम एक ऐसी मनोदशा में पहुंच जाते हैं कि हम अपने को नायक के दुख का भागीदार मान लेते हैं। यह सब कुछ कल्पना के सहयोग के से संभव होता है। सच्चा दुखांतकीय भय बहुत कुछ अव्यक्तिक भाव इम्पर्सनल इमोशन बन जाता है, जिसका संबंध किसी विशेष घटना से न होकर सामान्य कार्य व्यापार की श्रृंखला से होता है, जो हमारे सम्मुख मानवता के भाग्य का प्रतिरूप बनकर प्रकट होती है। बुचर की यह व्याख्या भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण के सिद्धांत की प्रतिध्वनि जैसी लगती है। दोनों में केवल तत्व साम्य ही नहीं, शब्द साम्य तक दिखाई देता है। अरस्तु भय और करुणा में से किसी एक के उद्रेक से नाटकीय प्रभाव की निष्पत्ति नहीं मानते, बल्कि दोनों के सम्मिलित उद्रेक से बाद के कुछ आलोचकों ने अथवा का समावेश किया है, किंतु वह यूनानी आचार्य के अभिमत से पृथक है। अरस्तु को भय और करुणा दोनों का संयोग इष्ट है। हाँ, यह और बात है कि कहीं भय का प्राधान्य हो जाए और कहीं करुणा का, मगर साहचर्य दोनों का अनिवार्य है। अरस्तु ने बार बार काव्य के सामान्य तत्व यूनिवर्सल एलिमेंट्स पर जो बल दिया है, उसका महत्व अब स्पष्ट होता दिखता है। जब तक काव्य विशेष से संसक्त रहेगा, जब तक उससे सामान्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी, तब तक उसका प्रभाव भी व्यापक नहीं होगा। व्यक्तिगत सुख दुख व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रह जाते हैं, इसलिए दूसरों को प्रभावित करने में अक्षम रहते हैं। इसके विपरीत काव्यगत सुख दुख उस सीमा का अतिक्रमण कर सर्वजनित बनने में सफल होते हैं। काव्य नाटक में के विभिन्न अंगों, कथानक आदि की अनविति युक्त सुगठित संरचना उनमें कार्य कारण भाव की स्थापना कर ऐसी कलात्मक प्रदान करती है कि हम यह भूल जाते हैं जो हो रहा है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी हो सकता था। यही अरस्तु की भाषा में संभाव्यता और आवश्यकता का नियम है। मानवीय दुख भोग की इस बेहतर परिधि में करुणा और भय का सम्मिलित उद्रेक सामान्य सर्वजनिन सार्वभौम में परिणत हो जाता है। जो कुछ भी वैयक्तिक और अहम मूलक है, वह विगलित होकर उस बृहत्तर परिधि में विलीन हो जाता है। फलतः प्रेक्षक अपनी सीमित अनुभूतियों से ऊपर उठकर भव्यतर अनुभूतियों का, भले ही वे दुखकर भी क्यों न हो, अनुभविता बनता है। भावों की इस आत्मविस्तृति भय के अविशुद्ध अंश का शोधन कर उनमें से भी आनंदात्मक का आधान कर देता है। दुखांतकीय उत्तेजना ट्रेजिक एग्जिस्टमेंट की सात्विक उद्दीप्ति के क्षण में अन्य भाव एक प्रकार रूपांतरित हो जाते हैं कि भव्य आह्लादकारी चेतना मात्र अवशिष्ट रह जाती है। यह काव्य का साध्य है। करुणा और भय दुखद भाव हैं, फिर भी उनकी परिणति आनंद में कैसे होती है? यह प्रश्न पश्चिम में ही नहीं भारत में भी करुण रस के प्रसंग में उठाया गया है। जैसा स्वाभाविक है, उसके उत्तर में एकमत्य नहीं है। मतभेदों की ऐसी विस्तृत चर्चा यहाँ अनपेक्षित है। अरस्तु ने स्पष्ट शब्दों में इस प्रश्न का समाधान नहीं किया है, किंतु समूहालंबन से इसका अभिप्राय जाना जा सकता है। वास्तविक जीवन में करुणा और भय के भाव दुख से संबलित अवश्य होते हैं, किंतु कलात्मक प्रक्रिया के वैशिष्ट्य के कारण दुखद अंश विलुप्त हो जाता है और शुद्ध आनंद बच रहता है। बात यह है कि लौकिक व्यवहार में दुख अशांति या क्लेश का कारण है। ममत्व परत्व की भावना, एक शब्द में कहे तो स्वार्थ संसक्ति, स्वार्थ अहम का ही विजृंभण है। जहां भी स्वार्थ या अहम होगा, वहां रोग विराग ईर्ष्या द्वेष आदि भी अवश्य रहेंगे और ये दुखदायी भी होंगे। योगी ब्रह्मानंद का अनुभव इसलिए कर पाते हैं कि उनके अहम का विगलन हो चुका होता है। भारत में काव्यानंद को ब्रह्मानंद का सहोदर इस दृष्टि से कहा जाता है कि उनकी उतनी देर के लिए प्रमाता अहम से मुक्त होकर वैयक्तिक स्वार्थ और सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। जैसे स्वच्छ दर्पण के सामने जो भी आएगा उसका प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिफलित होगा, वैसे ही अहम के लोप से जब मन मुकुर विशद हो जाता है तो उसमें अपना सुख ही सुख और अपना दुख ही दुख प्रतीत नहीं होता। सबों के सुख दुख अपने जैसे प्रतीत होने लगते हैं, क्योंकि अपने पराए का भेद करने वाली अहम की दीवार ढह चुकी होती है। विरेचन से केवल भावात्मक विश्रांति ही नहीं होती, बल्कि भावात्मक परिष्कार भी हो जाता है। भले ही वह अस्थाई हो, दुखांतक देखने के बाद ऐसा होता तो नहीं कि क्लेशकर भावों से मनुष्य हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? यदि ऐसा होता तो नाटक नैतिक सुधार का सर्वोत्तम साधन बन जाता। जेलों की जगह नाट्यशालाएं ले लेती। इसलिए स्थायी भाव परिष्कार तो नहीं होता, पर कलात्मक तात्कालिक अवश्य होता है। इस विरेचन की सार्थकता है। अनवीतियाँ, यूनिटीज, नाटक के तत्वों के विवेचन के क्रम में संकलन त्रय की चर्चा अनिवार्य सी रही है और उनके उद्भावक का पद अरस्तु के लिए अचल प्रतिष्ठित है, किंतु अरस्तु ने कहीं भी तीन संकलनों का इस ग्रंथ में संकलन के बदले अनवीति शब्द का प्रयोग हुआ उल्लेख नहीं किया है। कोई भूल भी बद्ध मूल होकर कितनी प्रामाणिक बन जाती है, इसका यह बहुत अच्छा उदाहरण है। बूचर ने इसको साहित्यिक अंधविश्वास, लिटेररी सुपरसिस्टनस की संज्ञा देते हुए कहा है, एकमात्र नाटकीय अनुवृत्ति जिसका अरस्तु ने विधान किया है कार्य व्यापार की अनुवृत्ति है। इसे अभी भी दोहराने की जरूरत पड़े यह आश्चर्य की बात है, किंतु अधिकारी व्यक्ति के अनुमोदन से एक बार स्थापित हो कर कोई साहित्यिक परंपरा इतनी दृढ़ हो जाती है कि लोकप्रिय लेखनों में हम भी तीन अनुवृत्तियों को पोएटिक्स के एक नियम के रूप में चर्चित पाते हैं। इसलिए इस भ्रम का निराकरण अपेक्षित है। काव्यशास्त्र के 8वें अध्याय में अरस्तु कहते हैं कि कार्य व्यापार का अनुकरण होने के नाते कथानक में एक ही कार्य व्यापार का अनुकरण होना चाहिए जो पूर्ण हो। खंडों का संरचनात्मक संयोजन ऐसा होना चाहिए कि उसमें उनमें से यदि एक को इधर उधर कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो पूर्ण कथानक खंडित और बाधित तो हो जाए। द ओनली ड्रामेटिक यूनिटी इंजॉइंड बाई एरिस्टाटल इज यूनिटी ऑफ एक्शन। इट इज स्टैंड दैट दिस शुड स्टिल नीड बी रिपीटेड इन्वेटर हाउ इवर इज ए लिटरेरी ट्रेडिशन वंस इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सनेक्शन ऑफ हाई अथॉरिटी दैट वी स्टिल फाइंड द थ्री यूनिटीज स्पोकन ऑफ इन पॉपुलर राइटिंग एज ए रूल ऑफ द पोएटिक्स। ATPFA पेज नंबर 288। इस कथन से स्पष्ट है कि कथानक के कार्य व्यापार में अनुमिति का होना आवश्यक है, क्योंकि अनुमिति रहित कार्य व्यापार का प्रभाव छिन्न भिन्न हो जाएगा। तात्पर्य कि अनुमिति का स्पष्ट प्रयोग एक इसी संदर्भ में मिलता है जिसका संबंध कार्य व्यापार से है। कार्य व्यापार की यह अनुमिति आंगिक और ऑर्गेनिक या आंतरिक इंटरनल अनुमिति है। केवल बाहर से दिखाई पड़ने वाला संयोजन मात्र नहीं, कार्य व्यापार की अनुमिति में घटनाएं विविध होती हैं, हुई भी कार्य कारण भाव के द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। कार्य कारण भाव का तात्पर्य यह है कि कोई उत्तरवर्ती घटना पूर्ववर्ती घटना की अनिवार्य परिणति प्रतीत होती है। यदि पूर्ववर्ती घटना न होती तो पूर्व उत्तरवर्ती घटना भी नहीं होती है। जैसे कारण के नहीं रहने का पर कार्य भी नहीं होता। इसलिए कार्य कारण भाव से जुड़े कार्य व्यापार के पर्यापर्य क्रम को अरस्तु आंगिक ऑर्गेनिक मानते हैं, संयोगिक एक्सीडेंटल नहीं। तो अरस्तु के अनुसार अन्विति दो रूपों में प्रकट होती है। एक तो कार्य कारण भाव के रूप में, जब नाटक के अनेक खंड जैसे बाह्य घटनाएं विचार भाव आदि अपरिवर्तनीय रूप में अंतर्गर्थित इन एक्सट्रिकेबली इंटरवुमेन हो। दूसरे इस तथ्य के रूप में कि सभी घटनाएं जिनमें नैतिक सुक्तियों का द्वंद भी शामिल है एक लक्ष्य की ओर बढ़ रही हो। कहने का अभिप्राय यह कि कार्य व्यापार का अंतर्ग्रथन का और लक्ष्य की एकतानता ये दोनों अनुमिति की अनिवार्य शर्तें हैं। अनुमिति के संबंध में अरस्तु ने इतना कहा कि शेष दोनों अनुमितियों को विद्वानों ने अपने बुद्धि बल से निकाल लिया है। कालान्विति यूनिटी ऑफ टाइम का उद्गम एक दुरारूढ़ प्रसंग से है। काव्यशास्त्र के पंचम अध्याय में दुखांतक और महाकाव्य के भेदक लक्षणों को दिखाते हुए अरस्तु कहते हैं कि दुखांतक में यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा तक सीमित रहने का अथवा इस सीमा का थोड़ा ही अतिक्रमण करने का प्रयास होना चाहिए, जबकि महाकाव्य के कार्य व्यापार में समय की कोई सीमा नहीं होती। हालांकि आरंभ में दुखांतक में भी समय की वही स्वतंत्रता मान्य है जो महाकाव्य में। अरस्तु ने न तो अन्विति शब्द का प्रयोग किया है और न काल की सीमा पर बल दिया है। जैसे यथासंभव शब्द से स्पष्ट है, द प्लॉट बीइंग एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन मस्ट इनिटिएट वन एक्शन एंड दैट ए होल द इंस्ट्रक्चुरल यूनियन ऑफ द पार्ट्स बीइंग सच दैट इफ एनी वन ऑफ देम इज डिस्प्लेस्ड आर रिमूव्ड द होल विल बी डिसजॉइंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ATPFA ट्रेजडी इंडिवर्स एज फार एज पॉसिबल टू इट सेल्फ टू ए सिंगल रिवॉल्यूशन ऑफ द सन आर बट स्लाइटली टू एक्सीड दिस लिमिट होरिज द एपिक एडमिटेड इन ट्रेजडी एज इन एपिक पोएट्रीज ATPFA पेज नंबर 23। इससे इसमें नियमन से अधिक समसामयिक प्रचलन का उल्लेख है। सूर्य की एक परिक्रमा की कला विधि वांछनीय तो है पर अनुलंघनीय नहीं। एक परिक्रमा का कुछ अतिक्रमण भी शक्य है। यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य का भी उल्लेख है। दुखांत के आरंभिक दिनों में काल का कोई बंधन नहीं था। महाकाव्य के समान उसका भी यथेच्छ विस्तार हो सकता था, किंतु समय बीतने के साथ इस शिल्पगत त्रुटि की ओर नाटककारों का ध्यान गया। उन्होंने देखा होगा कि कालिक बंधन से मुक्त नाटकों की रोचकता क्रमशः छीण होती जाती है और उनका प्रभाव बिखर जाता है। इसलिए कुछ न कुछ काल सीमा का पालन वांछनीय है और इसके लिए उन्होंने यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा की सीमा रखी होगी। ग्रंथकार के अभिप्राय को व्याख्याकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से ऐठना शुरू किया और यथासंभव की परिणति अलंघ्य नियम में हो गई। पर इतने से ही बौद्धिक विलास कैसे तृप्त हो सकता था? फिर आरंभ हुआ सूर्य की एक परिक्रमा के अभिप्राय का विशदन। कुछ विद्वानों ने सूर्य की एक परिक्रमा का अर्थ 12 घंटे किया, कुछ ने 24 घंटे। दोनों अर्थ ठीक है। रोमी और फ्रांसीसी आलोचक के बीच बहुत दिनों तक 12 और 24 घंटों का विवाद चलता रहा और नाटककारों के लिए इसका पालन अनिवार्य था। नव अभिजात्यवादी नियो क्लासिकल युग 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक ने कलान्विति को द्वितीय अन्विति के आसन पर आसीन कर दिया। कलान्विति के बाद स्थानान्विति ने जोर लगाया, क्योंकि स्थान और काल तो साथ चलने वाले तत्व हैं। कलान्विति का तो दुरारूढ़ ही सही एक आधार था, यथासंभव सूर्य की एक परिक्रमा पर। स्थानान्विति का तो वैसा भी कोई आधार नहीं था। व्याख्याकारों ने यहाँ भी अपने बुद्धि बल का प्रदर्शन किया और सोचा कि जब कलान्विति हो सकती है तो स्थानान्विति क्यों नहीं हो सकती। इस प्रकार एक तीसरी अन्विति का भी आविर्भाव हो गया। कहा जाता है कि स्थानान्विति की उद्भावना स्पेनी आलोचक लुदोविको कास्तेलवेत्रो काव्यशास्त्र की अपनी व्याख्या में 1570 ईस्वी। बात यह है कि व्यापारान्विति यूनिटी ऑफ एक्शन का स्पष्ट विधान अरस्तु ने इसलिए किया कि उसे नाटक की संरचना का अनिवार्य अंग माना है और उसकी कलात्मक उपादेयता देखी है। यही कारण है कि नाटक के साथ उन्होंने व्यापारान्विति का आंगिक संबंध स्थापित किया। कलान्विति और स्थानान्विति का संबंध नाटक की संरचना से नहीं उसके मंचन से है। ये दोनों अन्वितियाँ मंच की व्यावहारिक सीमाओं और कठिनाइयों को दृष्टि में रखकर स्वीकार की गई। यूनानी मंच पर पर्दे नहीं होते थे, सारा मंच आरंभ से अंत तक दर्शकों से के सम्मुख खुला रहता था। इसलिए नाटककार नाटकों को अंक में विभाजन नहीं करते थे, क्योंकि विभाजन को दिखाने का पर्दे जैसा कोई साधन नहीं था। परिणाम यह होता था कि नाटक एक बार जो आरंभ होता तो अंत तक अविराम चलता रहता। फलतः कलान्विति और स्थानान्विति का अवकाश नहीं के बराबर था। जब यूरोप की नाट्यशालाओं में पर्दे का विकास हो गया तो ये अधिक सार्थक हो गई। कलान्विति और स्थानान्विति नाटक के लिए अनिवार्य नहीं है। यह नाटककार की प्रतिभा और कला पर निर्भर करता है कि वह कला का स्थान के अंतराल को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि वह खटके नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक की अवधि कई वर्षों की है। दुष्यंत शकुंतला के प्रथम प्रणय से लेकर उनके पुत्र भरत के सिंह शावक के दांत गिनने लायक बड़ा होने तक का कथानक नियोजित है। स्थान की स्थिति यह है कि मर्त्य लोक की कौन कहे कथानक स्वर्ग लोक तक चला जाता है, किंतु कहीं भी यह अंतराल खटकने की बात तो दूर अनुभव गम्य भी नहीं होता। शेक्सपियर के नाटकों में भी इन अनवितियों की रक्षा नहीं हुई है, पर इससे उनके कलात्मक उत्कर्ष में कोई बाधा नहीं पड़ी है। फ्रेडरिक द ग्रेट ने अनवितियों की उपेक्षा के कारण शेक्सपियर के नाटकों को फार्स का नाम दिया और कहा कि ये कनाडा के जंगलियों के ही देखने योग्य हैं, क्योंकि ये मंच से सभी नियमों की अवहेलना करते हैं। इतना कहकर ही फ्रेडरिक वितर विरत नहीं हुए, आगे कहा कि ये नियम ऐच्छिक नहीं है, आप इन्हें अरस्तु के काव्य शास्त्र में देख सकते हैं। ऐसे ही उत्साहियों की व्याख्याओं को ध्यान में रखकर बूचर ने कहा है कि लोगों ने काव्य शास्त्र में उन बातों को भी ढूंढ निकाला है जिनकी अरस्तु ने कल्पना भी नहीं की थी। मूल्यांकन। पहला, यूरोपीय आलोचना के प्रसिद्ध इतिहास लेखक जॉर्ज सेंट सबरी का कहना है कि विगत 2300 वर्षों में संसार की किसी साहित्यिक कृति पर इतना विचार विमर्श नहीं हुआ है जितना इस प्रसिद्ध पुस्तिका काव्यशास्त्र पर। ठीक ही अनुवाद, टिप्पणी, व्याख्या, आलोचना आदि के रूप में संसार की विभिन्न भाषाओं में जितना और जो लिखा गया है उसका यथार्थ तथ्य आकलन असंभव की सीमा छूने लगता है। कठिनाई इसलिए और भी बढ़ जाती है कि उसका विस्तार देश में ही नहीं काल में भी है। अपूर्ण प्राय यह अति लघु कृति आज तक जीवित तो है ही, अपनी प्रासंगिकता भी बनाए हुए है। अरस्तु की कथित 400 कृति संततियों में अपने जनक को जितना यश इस छीड़काय काव्यशास्त्र ने दिया उतना और किसी ने नहीं। दूसरा, काव्यशास्त्र यूनानी काव्य पर आधारित होते हुए भी कुछ ऐसे सौंदर्य शास्त्री प्रश्नों को उठाने और कुछ दूर तक उनका समाधान करने में सफल हुआ है जो सार्वदेशिक तथा सार्वकालिक है। अरस्तु के आलोचकों का आरोप है कि उनके समक्ष यूनानी साहित्य के अलावा और कोई साहित्य नहीं था, अतः उनकी दृष्टि में वह व्यापकता और विशदता नहीं है जो गंभीर आलोचना के लिए अपेक्षित है। यह आरोप निर्मूल नहीं है, पर यह ऋण पक्ष पर बल देना है। अरस्तु का धन पक्ष यह है कि एक भाषा के सीमित साहित्य पर और वस्तुतः साहित्य जैसा व्यापक अर्थ का वाचक सब कोई शब्द यूनानी भाषा में था ही नहीं, इसलिए प्रत्येक साहित्यिक विधा दुखांतक महाकाव्य प्रसन्न आदि का अलग अलग नाम लेकर उन्हें अपना मंतव्य व्यक्त करना पड़ा। उन्होंने आलोचना का प्रसाद खड़ा किया। सच तो यह है कि मुख्यतः चार ही लेखकों की कृतियां उनके विवेचन की आधार भूमि रहीं। होमर के काव्य महाकाव्य और सोफोक्लेस यूरिपिडेस तथा एस्किलूस के दुखांतक, अरिस्तोफानेस जैसे प्रसन्नकार और पिंडार जैसे गीतिकार उन्हें रुचिकर या विवेच्य प्रतीत नहीं हुए हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि अरस्तु आलोचक थे ही नहीं, वे तो दार्शनिक और वैज्ञानिक थे, इसलिए आलोचना के अनेक मौलिक प्रश्नों का उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया, जैसे आलोचना क्या है, साहित्य आलोचना के सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर वे यूनानी साहित्य की आलोचना करना चाहते हैं आदि आदि। हम अरस्तु की इन सीमाओं को स्वाभाविक मानते हैं। आश्चर्य इसका नहीं कि उनके ये सीमाएं हैं, आश्चर्य इसका है कि इन सीमाओं के बावजूद उन्होंने ऐसे अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए जो स्थायी और सार्वभौम आलोचना का उपकरण बनने में समर्थ हुए हैं। तीसरा, जो दार्शनिकता और वैज्ञानिकता अरस्तु की सीमाएं मानी जाती हैं, वे ही उनकी विशेषताएं भी हैं। दार्शनिक की तत्वदर्शिता और वैज्ञानिक की विश्लेषकता के योग ने उनकी दृष्टि को निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ रखा है। उनका विषय निरूपण तथ्यानुसंधान की भावना से प्रेरित है, उसमें कहीं भी हठधर्मिता नहीं है। उसमें अपने गुरु प्लेटो से अरस्तु का स्पष्ट भेद है। प्लेटो में मताग्रह है और जैसे भी हो अपनी बात को प्रमाणित कर देने की चातुरी है। जब तक कोई बहुत सावधान न हो तब तक प्लेटो के से असहमत होना भी कठिन है, क्योंकि वे गलत बात भी इस ढंग से कहते हैं कि श्रोता उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अरस्तु में यह नहीं है, वे अपनी बात आपके सामने निरपेक्ष भाव से रख देते हैं। मानना न मानना आपकी इच्छा पर है। चौथा, अरस्तु की सबसे बड़ी देन है काव्य की स्वायत्तता की स्थापना। उसे गंभीर विचार के योग्य विषय सिद्ध करना चौथी पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व की यूनानी शास्त्रीय गतिविधि पर ध्यान देने से इस कार्य की गुरुता स्पष्ट हो जाती है। दर्शन की महत्ता शीर्ष पर थी, उसके बाद इतिहास का स्थान था, फिर राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र आदि का। काव्य तो इस परिधि में कहीं आता ही नहीं था। प्लेटो ने दर्शन और काव्य के शाश्वत विरोध की बात ही नहीं की थी, बल्कि जब भी अवसर मिला और न मिला तो दूसरे प्रसंगों में भी अवसर निकालकर उन्होंने काव्य की लघुता और अवांछनीयता साबित करने में कोर कोर नहीं रखी। बद्ध मूल परंपरा के प्रतिकूल प्लेटो जैसे प्रभावशाली आचार्य की बहुशः आवृत्तियों के प्रतिकूल काव्य को इतिहास से अधिक दार्शनिक घोषित करना साहस का काम था, साहस से अधिक तर्क युक्त प्रमाणन का कार्य था, क्योंकि साहस को तुर्क तो कुतर्क में भी रहता है। उनके तर्क की भंगिमा इतिहास तो केवल उसी का वर्णन करता है जो हो चुका है, इसके विपरीत काव्य उसका वर्णन करता है जो हो सकता है। यदि इतिहास आगत का आख्याता है तो काव्य अनागत का व्याख्याता है। एक घटित को लेकर चलता है, दूसरा संभावित को। इतिहास में व्यक्ति विशेष का निरूपण रहता है, काव्य में सामान्य का। इतिहास का संबंध यथार्थ से है, काव्य का आदर्श से। इसलिए काव्य इतिहास से कहीं ऊपर की चीज है। अरस्तु द्वारा दिए गए इस उच्चासन से कोई काव्य को फिर उतार नहीं सका। केवल दो वाक्यों में उन्होंने सारे विरोधों को निरस्त कर काव्य को अविचल प्रतिष्ठा दे दी। पांचवा, प्लेटो कवि को अनुकर्ता कहकर उसकी सारी प्रतिभा और प्रकर्ष पर पानी फेर दिया था। प्लेटो की सत्य सोपान परंपरा में बढ़ई का भी स्थान कवि से ऊपर था, क्योंकि बढ़ई तो सत्य से द्विधा ही अपेत ट्विस्ट रिमूव्ड होता है, पर कवि तो त्रिधा अपेत थ्राइक रिमूव्ड है। अरस्तु ने कहा कि कौन कहता है कि कवि अनुकर्ता है, वह तो करता है। ईश्वर की तरह काव्य जगत का निर्माता है। यह दृष्टि भारतीय दृष्टि से मिलती है, जिसमें कवि को प्रजापति कहा गया है। अपने अपारे काव्य संसारे कवि रेव प्रजापति है। यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। अपार काव्य संसार का कवि ही प्रजापति सृष्टा है। कवि की जैसी रुचि या इच्छा होती है वह विश्व काव्य संसार वैसा ही बन जाता है। मम्मट ने इसी को प्रकारांतर से इस कहा है कि कवि की वाणी का संसार नियति के नियम से मुक्त और सर्वथा स्वतंत्र नियतिकृत नियम रहित अनन्य परतंत्र होता है। इसलिए कवि अपने संसार का सृष्टा है, स्वामी है। छठा, अनुकरण को भी अरस्तु ने उस स्थिति से उबारा है जिसमें प्लेटो ने उसे डाल रखा था। प्लेटो का अनुकरण नकल का पर्याय था, अतः उसमें गहार्य का भाव था। अनुकरण ने अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ आदर्शीकृत प्रतिरूपण आइडियलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन और बताया कि कवि प्रकृति का या मानव जीवन का हूबहू चित्रण नकल नहीं करता, उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ता है और यथार्थ को रमणीयतर बनाकर प्रस्तुत करता है। सदा प्रकृति से अर्थात बाहर से ही काव्य वह काव्य का उपमा उपादान ग्रहण करे यह भी आवश्यक नहीं, वह कल्पना की सहायता से मानस सृष्टि भी कर सकता है। इसलिए अरस्तु ने अनुकरण में आदर्शीकरण का योग किया है। इसका अभिप्राय यह भी दिखाना था कि आदर्शीकरण होने से काव्य यथार्थ की अपेक्षा उत्कृष्टतर और प्रशस्यतर है। प्लेटो ने बार बार आदर्श पर बल दिया था। अरस्तु की इस व्याख्या में उसका भी समाहार हो गया है। फिर उन्होंने अनुकरण को एक सृजनात्मक शक्ति माना जिसमें जगत और जीवन के सत्य को प्रकट करने के लिए आवश्यकता अनुसार संग्रह त्याग और व्यवस्था की क्षमता होती है, अर्थात क्या रखें क्या छोड़ें और किस प्रकार क्या उपस्थित करें, इनका ज्ञान अनुकरण का सहचारी होता है। सातवां, आनंद को कला का काव्य का प्रयोजन सिद्ध कर उन्होंने उसे नैतिक शैक्षिक घेरे से बाहर निकाला। प्लेटो ने काव्य को समाज के नैतिक शैक्षिक सुधार का साधन माना था। काव्य की सामाजिकता का विरोध अरस्तु ने भी नहीं किया, पर जहां प्लेटो ने काव्य की सामाजिकता उसकी नैतिक उन्नयन की क्षमता में देखी, वहां अरस्तु ने उसकी आनंद प्रदान की क्षमता में। समाज के लिए यदि नैतिक उन्नयन आवश्यक है तो आनंद प्राप्ति भी कम आवश्यक नहीं है। इसलिए अरस्तु ने काव्य के नैतिक मूल्य का खंडन तो नहीं किया, पर उसके आनंदात्मक मूल्य को उजागर कर अवश्य किया और अपने गुरु की शंका का निवारण करते हुए प्रतिपादित किया कि काव्य से उत्पन्न आनंद तो न तो मन के लिए अहितकर होता है, न आत्मा के लिए, न व्यक्ति के लिए, न समाज के लिए। इसलिए कवि से गणतंत्र का कोई खतरा नहीं है। जो काम कवि प्लेटो को करना चाहिए था, प्लेटो की आलोचना के क्रम में हम देख चुके हैं कि उनके लेखकीय जीवन का आरंभ काव्य से हुआ था, किंतु सुकरात के संपर्क में आने पर उन्होंने उसे नष्ट कर दिया और दर्शन को अपना लिया। वह वैज्ञानिक अरस्तु ने किया। तब से गुरु शिष्य का यह विवाद काव्य का प्रयोजन उपदेश है या आनंद यूरोप में चला आ रहा है और युग के अनुसार कभी एक को तो कभी दूसरे को अधिक महत्व मिलता रहता है। आठवां, आज जिसे रूपवादी फॉर्मेलिस्टिक आलोचना कहते हैं उस यूरोप में उसके उद्भावक अरस्तु ही हैं। प्लेटो के काव्य रूप के संबंध में कुछ भी नहीं कहा था, केवल विषय के आधार पर काव्य को त्याज्य घोषित कर दिया था। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य केवल विषय नहीं है, रूप भी है, बल्कि विषय से बढ़कर रूप ही है। काव्य के सौंदर्य का उत्कर्षापकर्ष का निर्धारक विषय से अधिक रूप ही होता है। अरस्तु ने काव्य के विषय के साथ उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम और पद्धति पर भी विचार किया। कथानक की संरचना से लेकर काव्य के भाषिक पक्ष तक को अपने विवेचन में समेट लिया। काव्य विधा काव्य शिल्प माध्यम के वैशिष्ट्य प्रभाव के स्वरूप और प्रभाव को उत्पन्न करने वाले साधनों के विश्लेषण उनके रूपवादी दृष्टिकोण के प्रमाण है। वे विशेषताएं अनुकरण की वस्तु नहीं है, कवि की प्रतिभा की उपज है। अरस्तु स्वच्छ स्पष्ट संप्रेषण के आग्रही हैं, अतः उन्होंने दुखांतक के अंगों उपाख्यानों आदि की योजना अथवा पद योजना का भी विचार संप्रेषण की प्राजलता को ध्यान में रख कर किया है। नवा, प्रभाव की दृष्टि से काव्य का निरूपण मानवीय मूल्यों के महत्व का प्रतिपादन है। विरेचन में भय से अधिक करुणा का मानवीय मूल्य है, क्योंकि वह सहानुभूति से उत्पन्न होती है और एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की भाग्य विपर्य जनित क्लेश कर स्थिति की अनुभूति का भागीदारी बनाती है। दसवां, अरस्तु ने एक पते की बात कही है। दृश्य को उन्होंने नाटक के प्रभाव का अनिवार्य अंग नहीं माना और बल देकर कहा कि नाटक का दुखांतकीय प्रभाव नाटक की संरचना में अर्थात उसके विषय तथा पद्धति के वैशिष्ट में रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में नाटक की सफलता इसमें है कि पढ़ने पर भी उसका वही प्रभाव पड़े जो मंच पर देखकर पड़ता है। जो लोग नाटक को अनिवार्यतः मंचन की वस्तु मानते हैं उन्हें इस मंतव्य पर विचार करना चाहिए। 11वां, अरस्तु के काव्यशास्त्र की जीवंतता का यह इस विशिष्ट प्रमाण है कि उसके सूत्रों को पकड़कर इस शताब्दी में दो आलोचना संप्रदाय विकसित हुए हैं। वे हैं अमेरिकी नई आलोचना न्यू क्रिटिसिज्म और शिकागो स्कूल। प्रथम के नेता जान को रैसम हैं और द्वितीय के जे एस क्रेन। प्रथम का विकास 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में हुआ और द्वितीय का 1950 के बाद। 12वां, अरस्तु की अभिव्यंजना सामान्यतः स्पष्ट प्रांजल और अर्थ गर्भ है। उन्हें समझने में कठिनाई वही होती है जहां उन्होंने अतिशय संक्षेप से काम लिया है या किसी शब्द की व्याख्या नहीं की है। संभवतः ऐसे शब्द उनके समय में इतने प्रचलित थे कि उनकी व्याख्या उन्हें अपेक्षित नहीं जान पड़ी अथवा उन्हें जानबूझकर व्याख्या नहीं की अथवा पांडुलिपि के अपूर्ण खंडित या त्रुटित होने का भी यह परिणाम हो। इनमें किसका कितना दायित्व है यह निर्णय करने का आज कोई साधन नहीं है। 13वां, अरस्तु की सीमाओं में सबसे प्रमुख है काव्य के सर्वांग पूर्ण विवेचन की प्रतिज्ञा कर ले केवल दुखांतक का विवेचन करना। प्रगति का उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, प्रहसन को चलता कर दिया। महाकाव्य की चर्चा केवल दुखांतक की श्रेष्ठता सिद्ध करने के प्रसंग में की है। इस तरह काव्य का शास्त्र न होकर केवल दुखांतक का शास्त्र बन गया। 14वां, आज साहित्य की विधाओं रूपों शिल्पों में इतना अधिक परिवर्तन क्रांति कहना शायद अधिक उपयुक्त हो गया है कि इसकी आलोचना के लिए काव्यशास्त्र अनुपयोगी बन गया है। जान गैसनर ने ठीक कहा है कि काव्यशास्त्र के सिद्धांतों से आज के साहित्य के आलोचना का प्रयास वैसा ही है जैसा चलनी में पानी रखने का प्रयास। पर लोगों ने यह प्रयास भी किया है और संभवतः आगे भी करते रहेंगे। 15वां, काव्यशास्त्र एक गंभीर सीमा है कि उसके काव्य भाषा विषयक विचार नहीं के बराबर है। जो है वह इतना अपर्याप्त है कि उसकी सहायता से काव्य लोचन की परिधि में प्रवेश भी संभव नहीं है। इस दृष्टि से प्राचीन भारतीय आचार्यों का भाषा विवेचन कहीं अधिक व्यापक गंभीर एवं व्यवस्थित है। अलंकारों की संख्या में तो आज भी पश्चिम भारत के पीछे हैं। वाग्विकल्प के विवक्षित पूर्ण कितने भेद प्रभेद हो सकते हैं इसमें भारतीय काव्यशास्त्र अप्रतिस्पर्धी है। संभव है सीधी सपाट वैज्ञानिक अभिव्यंजना के अभ्यासी अरस्तु को काव्य की वक्र कथनी भंगी आकृष्ट करने में असफल रही हो। 16वां, अरस्तु ने मताग्रह से मुक्त होकर सच्चे अनुसंधायक के रूप में काव्य के तत्वों के विश्लेषण का बीड़ा उठाया था और निष्ठा से उसे पूरा किया। उनका काव्यशास्त्र वर्णनात्मक आलोचना डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का उत्तम और प्रथम निदर्शन है। उन्होंने कहीं भी नियामक ला गिवर बनने का प्रयत्न नहीं किया है, किंतु संयोग ऐसा कि 300 वर्ष 16वीं से 18वीं शताब्दी तक के वे नियामक ही माने जाते हैं। उनके नियमों का उल्लंघन साहित्यिक अपराध में गिना जाता था। नव अभिजात्यवादी नियो क्लासिकल युग में तो काव्यशास्त्र को बाइबिल जैसी मान्यता प्राप्त थी। 19वीं शताब्दी में रोमांटिक भावधारा के आविर्भाव के बाद ही काव्यशास्त्र का प्रभाव छीण हुआ। पर छीण ही हुआ, लुप्त नहीं। यह और बात है कि उनका अधिकतर महत्व अब ऐतिहासिक ही रहा होगा है, पर यह वह ऐसा ऐतिहासिक अभिलेख है जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। सेंट सबरी का कहना सर्वथा समीचीन है कि जो आलोचक की भूमिका पूरी करना चाहता है उसके लिए बिना गंभीर क्षति उठाए अरस्तु का अध्ययन करना संभव नहीं है। अरस्तु आलोचना के सिकंदर हैं और इस क्षेत्र में उनकी विजय श्रृंखलाएं दूसरी क्षेत्र में उनके शिष्य की विजय श्रृंखलाओं के विपरीत आज भी प्रायः ज्यों की त्यों कायम है, बल्कि उनका कुछ विस्तार ही हुआ है। अरस्तु अध्याय समाप्त।